सुखदेव गोस्वामी वर्णन करने जा रहे हैं उस सुंदर ऋतु का, जो कि कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण ऋतु है वृंदावन में, और वो है शरद ऋतु। वैसे ये दो ऋतु, एक तो वसंत ऋतु और दूसरा शरद ऋतु, ये सबसे दो महत्वपूर्ण ऋतु माने जाते हैं वृंदावन में। तो शरद ऋतु जब आई वर्षा के मौसम के बाद, तो उस समय जो वर्षा ऋतु के घने बादल थे वो धीरे धीरे हट गए, जल स्वच्छ हो गया और पवन वो भी मधुर या कोमल हो गई। वर्षा के समय बादल घने रहते हैं, वायु बड़ी तेज रहती है, तूफान के तरह कभी कभी वायु चलती है, लेकिन शरद ऋतु के आगमन से सब कुछ शांत हो जाता है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि शरद ऋतु में सबसे पहले धीरे धीरे से कमल पुष्प सब जगह दिखाई पड़ने लगते हैं वृंदावन में, क्योंकि कमल पुष्प उनको पुनः शक्ति मिल जाती है और पुनः जीवित हो जाते हैं, और साथ साथ जो नदियां हैं, तालाब हैं, कुंड हैं, उनमें शुद्धता आने लगती है फिर से। हम जानते हैं कि बारिश के मौसम में सब जगह कीचड़ कीचड़ हो जाता है, जब जल मिट्टी में गिर जाता है तो जल दूषित हो जाता है, लेकिन शरद ऋतु के आने से सब कुछ स्वच्छ होने लगता है, जिस तरह से कि एक पथभ्रष्ट योगी पुनः भक्ति के मार्ग को स्वीकार करके कैसे उसका हृदय फिर से शुद्ध हो जाता है, ठीक उसी तरह से जो जल पहले शुद्ध था बरसात के मौसम में मलिन हो गया और फिर से अभी शरद ऋतु के आगमन से शुद्ध हो गया। जब आकाश में बादल निकल जाते हैं तो ये ऐसे है कि मानो जो चार आश्रमों के कष्ट हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम हैं, और इन चारों में बहुत सारे कर्तव्य हैं जो करने पड़ते हैं, और इनमें से कई कर्तव्य ऐसे होते हैं जिनको करने में काफी तकलीफ आती है, लेकिन कर्तव्यों को हमें करते रहना चाहिए। ब्रह्मचारी आश्रम में नाना प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं, जैसे भी सेवा बताई जाती है वैसे आश्रम में करना पड़ता है, कोई सेवा ऊंचा नहीं नीचा नहीं, साधारण से साधारण कार्य, चाहे वो झाड़ू हो या कुछ भी हो, सब कुछ बड़े हृदय से करना पड़ता है। तो हो सकता है कि कभी कभी एक कष्ट हो, लेकिन करना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम में भी ऐसे कई कर्तव्य होते हैं जिनको करते करते काफी कठिनाई हो जाती है। जो व्यापार करता है उसको व्यापार के तनाव सहन करने पड़ते हैं, जो गृहिणी होती है घर के तनाव उनको सहन करने पड़ते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में जाकर वन में जाकर तपस्या करनी पड़ती है जिससे काफी कष्ट होता है, संन्यास आश्रम में भी बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़ते हैं क्योंकि प्रचार के लिए इधर उधर घूमना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे से जैसे आध्यात्मिक जीवन में सभी प्रगति करते हैं तो फिर ये कष्ट धीरे धीरे से दूर हो जाते हैं। जैसे कि ब्रह्मचारी आश्रम में जब ब्रह्मचारी आगे बढ़ने लगता है तो उसके जीवन में कष्टदायक जो सेवाएं हैं उनसे उठकर वो आगे आगे चलता है। गृहस्थ जीवन में जैसे जैसे वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसके पारिवारिक जीवन की जो समस्याएं हैं उसके मन में वो कम हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से वानप्रस्थ आश्रम में भी और संन्यास आश्रम में जैसे कृष्ण भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके मन में ये कष्ट जो है इतना तंग उसको नहीं करते हैं। तो ये है बादल जो कि शरद ऋतु में दूर हट जाते हैं। और एक बात जो दिखाई पड़ती है शरद ऋतु में वो ये है कि वर्षा ऋतु में जो पशु गाय बैल इत्यादि जो किसी आश्रम में रहते हैं बाहर नहीं आते वर्षा की वजह से और कई पशुओं को एक साथ रहना पड़ता है वो अब खुले ही इधर उधर बाहर घूम सकते हैं। उनको बड़ा आनंद होता है क्योंकि वर्षा के समय वो एक जगह बहुत सारे पशु छोटे जगह में बांधे हुए होते हैं ये एक गौशाला में रहते हैं उदाहरणार्थ। लेकिन जब वर्षा समाप्त हो जाती है शरद ऋतु आ जाता है तो फिर चरने चले जा सकते हैं खुले जगह में जा सकते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। जिस तरह से एक गृहस्थ होता है जब कई सालों तक अपने जिम्मेदारियों को निभाता है बहुत कष्ट सहन करता है और वे जब उम्र थोड़ी बढ़ जाती है अब सोचता है चलो अब मैं वानप्रस्थ लूंगा अब संसारी कामों में कम रुचि लूंगा अब मैं इन कर्तव्यों से थोड़ा बहुत मुक्त हो गया अब भगवान की सेवा करूंगा ज्यादा से ज्यादा। जैसे उसको संसारी कष्टों से राहत मिलती है भगवान की सेवा में आकर वानप्रस्थ में आकर तो ठीक उसी तरह से पशुओं को भी मुक्ति मिलती है वर्षा ऋतु के बंधन से। और एक जो चीज शरद ऋतु में दिखाई पड़ती है कि जो वर्षा ऋतु का कीचड़ वगैरह है वो स्वच्छ हो जाता है। जिस प्रकार से नाना प्रकार के हमारे जीवन में जो कष्ट हैं वो दूर हो जाते हैं और जो जल का शुद्धिकरण है वो ऐसे है कि मानो संन्यास आश्रम में नाना प्रकार के काम वासनाओं से मुक्ति मिल जाती है। तो ये चारों चीजों जो हैं ये ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के तकलीफों को दूर होने का प्रतीक है। ऐसे काव्यात्मक ढंग से शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। आगे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिस तरह से पानी को त्याग कर ये जो बादल होते हैं फिर से प्रकाशमान हो जाते हैं ठीक उसी प्रकार से जो बहुत ही शांत स्वरूप के ऋषि मुनि होते हैं वो भौतिक इच्छाओं को त्याग कर और शांतता की प्राप्ति करते हैं। हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में बादल काले होते हैं घने होते हैं क्योंकि पानी से भरे हुए होते हैं और इस तरह से वो सूरज की रोशनी को ढक लेते हैं आकाश दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन शरद ऋतु के आने से ये बादल सब पानी से खाली हो चुके होते हैं और फिर से सफेद रंग के हो जाते हैं तेजस्वी प्रकाशमान हो जाते हैं और जो आकाश या सूरज की रोशनी है उसको अच्छी तरह से वो प्रस्तुत कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन नहीं होता तो उसके हृदय में बहुत सारे अनर्थ होते हैं जो गंदगी के समान है उसका हृदय काला है। लेकिन जब वो भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है साधु बन जाता है ऋषि मुनि बन जाता है उसके हृदय से ये सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं उसका चित्त शुद्ध हो जाता है मन शांत हो जाता है और फिर उसके शुद्ध मन से आत्मा का सच्चा स्वरूप जो है वो प्रकट हो सकता है। जैसे कि आसमान का प्रकाश बादलों से प्रकट हो सकता है शरद ऋतु में। देखिए कितने सुंदर सुंदर उदाहरण शुकदेव गोस्वामी दे रहे हैं। आगे शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि शरद ऋतु में हम देखते हैं कि पहाड़ कभी कभी जल देते हैं और कभी कभी रोक के ले लेते हैं। जैसे कि बरसात के समय हम देखते हैं कि पानी पहाड़ों से निरंतर बहता रहता है लेकिन शरद ऋतु में कभी बहता है और कभी नहीं बहता है। ठीक उस तरह से कि आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले जो महान संत होते हैं ऋषि मुनि होते हैं कभी लगातार बहुत आध्यात्मिक विषयों पर बोलते 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 रहते हैं और कभी कभी वो बोलते ही नहीं है, मौन धारण करते हैं। ठीक उसी तरह से ये वृंदावन में शरद ऋतु के समय वो पहाड़ हुआ करते थे। बरसात के मौसम में तालाब, नदियां, ये सब पानी से भर जाती थी, लेकिन जब वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है पानी धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। लेकिन देखा जाता है कि थोड़े मूर्ख मच्छी होते हैं जो उस तालाब को उस समय छोड़ते नहीं है। तालाब को छोड़कर वो नदी में जा सकते थे लेकिन तालाब में ही रहते हैं, और फिर क्या होता है कि तालाब का पानी नीचे 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 होकर फिर वो तट पे अटक जाते हैं और मर जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में बिल्कुल रुचि नहीं लेता है, भौतिकवादी है, भोगवादी है, केवल अपने कुटुंब में पड़े रहता है और ये नहीं देखता कि उसका जीवन बीतते जा रहा है, उसकी आयु घटती जा रही है, जीने के लिए जितना समय बाकी है वो कम होते जा रहा है। जैसे कि शरद ऋतु के आगमन पर तालाबों का पानी कम होते जाता है, कम होते जाता है, और मछली इसको देखता नहीं है, समझता नहीं कि मैं अभी तट पे पड़ जाऊंगा, जमीन पे आ जाऊंगा, मर जाऊंगा, पानी रहेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में ही हमेशा रहना चाहता है, कभी भी भगवान की सेवा में आना नहीं चाहता है, संसारिक कर्तव्यों से मुक्त नहीं होना चाहता है, वो अपने आने वाले मृत्यु को देख नहीं पाता है और उसकी आयु जो है वो घटती रहती है, घटती रहती है। और ये भी हम देखते हैं कि जब ऐसे मछली बाहर तट पे आ जाते हैं या थोड़े से पानी में भी हैं, तो वर्षा ऋतु के बाद जब बादल हट जाते हैं तो सूरज फिर से तेजी से चमकने लगता है, तो उस समय ये मछलियों को सूरज का तेज जो प्रकाश है और जो गर्मी है उससे काफी कष्ट होती है, लेकिन फिर भी वो नदी का आश्रय नहीं लेते हैं। जिस प्रकार से एक कंजूस आदमी बार बार वो तड़पता रहता है उसकी कंजूसी की वजह से, कंजूस आदमी से कष्ट किसको होता है, सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति को होता है। आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि शरद ऋतु के आगमन से जमीन अपने कीचड़ जो कीचड़ को त्याग देती है, जमीन भी शुद्ध हो जाता है, नाना प्रकार के फूल पौधे उगने लगते हैं। तो जमीन के कीचड़ को त्यागना सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे साधुओं के समान है जो कि अहंकार को और ममत्व के भावना को, कि ये मेरा है, प्रभुत्व की भावना को वो त्याग देते हैं। सारे जो तालाब हैं, सागर हैं, वो शांत हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में निरंतर वर्षा की वजह से हमेशा एक तरह की विचलता रहती है पानी के तालाबों में और सागरों में, लेकिन शरद ऋतु के आने के साथ ये सब कुछ शांत हो जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति जो भौतिक कार्यों को त्याग कर भगवान के शरण में जाता है तो तुरंत शांत हो जाता है। तो भक्ति में आने का मतलब है शरद ऋतु का आना, और भौतिक इच्छाओं से विचलित होना ये वर्षा ऋतु के समान है, जहां सब कुछ विचलित हो जाता है। और ये देखते हैं कि वर्षा ऋतु में जब पानी ज्यादा बढ़ जाता है तो किसानों ने खेतों में किए हुए बंधारे वगैरह हैं बंद, वो सब टूट जाते हैं, और अब किसान शरद ऋतु में फिर से अपने अपने बंद वगैरह बंधारे जो हैं वो बनाने शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से योगी अपने चेतना को इंद्रिय तृप्ति में न खोने की वजह से नाना प्रकार के योग अभ्यास वगैरह करता है ताकि उसकी चेतना नष्ट न हो जाए। देखिए एक एक चीज सुखदेव गोस्वामी देख रहे हैं प्रकृति में और कैसे उसको आध्यात्मिक तात्पर्य दे रहे हैं। शरद ऋतु में जब सूरज फिर से प्रकाशित होने लगता है तो रात के चांद के किरणों से जो कष्ट दिन के गर्मी से होता है वो कम हो जाता है। जिस प्रकार से जब आदमी को ज्ञान मिल जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान, तो उसका शारीरिक कष्ट आराम से, आसानी से कम हो जाता है। और जिस प्रकार से मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के आने से गोपियों के विरह का कष्ट कम हो जाता है, ठीक उसी तरह से शरद ऋतु की जो चांदनी है वो दिन के गर्मी को नष्ट कर देती है। शरद ऋतु का चांद ये बहुत प्रसिद्ध है, और खास करके शरद पूर्णिमा का चांद, क्योंकि शरद पूर्णिमा के रात पर भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला की थी, और वैष्णवों के लिए ये शरद पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और इस समय रात का जो आकाश होता है, आसमान होता है, वो चांद और तारों से भरा हुआ होता है, प्रकाशमान होता है, जैसे एक साधु का शुद्ध हृदय। और ऐसे अवस्था में, खास करके पूर्णिमा के रात को, हम पूरे चांद को देख सकते हैं जो कि तारों से घिरा हुआ है, मानो कि भगवान कृष्ण द्वारका में यदुवंश के सदस्यों से घिरे हुए हैं। और वहां पर शरद ऋतु में वृंदावन के वनों में जो पवन आता है वो इतना शीतल होता है, इतना मधुर होता है, कि सारे ब्रजवासियों को जो भी कष्ट होता होगा, शारीरिक कष्ट गर्मी की वजह से, वो सब दूर हो जाता है। और सारे प्राणी पशु भी इस शरद ऋतु में काम के शिकार हो जाते हैं, और इसलिए सारे प्रजा उत्पत्ति के कार्य ये शरद ऋतु में बढ़ जाते हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे जो कमल पुष्प हैं वो सूरज के आने से सुबह फिर से खिलने लगते हैं। केवल कुमुद जो एक प्रकार का कमल पुष्प है जो कि रात में खिलता है, इसके अलावा बाकी जो भी कमल पुष्प हैं वो दिन में खिलते हैं। जिस तरह से जब एक बहुत शक्तिशाली राजा रहता है तो उसके राज से सारी प्रजा निर्भय हो जाती है, लेकिन केवल जो चोर हैं वो डरने लगते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से वर्षा ऋतु के, क्षमा कीजिए, शरद ऋतु के सूरज से सारे कमल पुष्प खिलने लगते हैं, केवल जो रात के जो कमल पुष्प है वो मुरझा जाती है। ये सब चीजें सुखदेव गोस्वामी देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे शरद ऋतु में हो रहा है वृंदावन में, इसलिए इनका वर्णन ऐसे करते हैं। और शरद ऋतु जब आ जाती है तो नाना प्रकार के उत्सव वगैरह मनाए जाते हैं, क्योंकि अब फसल वगैरह आ गई होती है और हरी भरी खेत हो जाती है, और सब लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि अब खेत भर गए हैं। किसानों के लिए गाँव में ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और वसंत ऋतु भी आ जाता है, जब फसल काटने का समय भी आ जाता है, तो ये भी बड़ा एक महत्वपूर्ण उत्सव होता है सब जगह गांव में। और ऐसे सुंदर वातावरण में कृष्ण और बलराम बड़े तेजस्वी और सुंदर लग रहे थे। और इस तरह से शरद ऋतु का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, और ये 20वां अध्याय समाप्त हो जाता है। लेकिन शरद ऋतु का वर्णन समाप्त केवल उस अध्याय में हुआ। शरद ऋतु का जो सबसे बड़ा ऐश्वर्य है, सबसे सुंदर बात जो शरद ऋतु की है, उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने अभी आखिर तक रखा है। शरद ऋतु का जो असली सौंदर्य ये नहीं है केवल कि सुंदर कमल पुष्प हैं और बादल दिखाई पड़ते हैं, सूरज निकल आता है, ये सब असली सौंदर्य नहीं है। सौंदर्य तो है, लेकिन मुख्य जो सौंदर्य है, ऐश्वर्य है, वो क्या है शरद ऋतु का? रासलीला, ठीक है, वो आएगी बाद में। वेणु, भगवान श्री कृष्ण की वेणु, बांसुरी बजने लगती है शरद ऋतु में। तो अब इसका वर्णन करने वाले हैं सुखदेव गोस्वामी, और इस अध्याय को वेणु गीत कहते हैं। ये 21वां अध्याय बड़ा सुंदर है, बड़ा प्रसिद्ध है, और इसमें प्राय हर एक श्लोक बहुत सुंदर है। जो कृष्ण भक्ति में बढ़ना चाहते हैं इस वेणु गीत को अच्छी तरह से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये वेणु गीत में हम देखने वाले हैं कि गोपियां वृंदावन की, वो कृष्ण भगवान के बांसुरी का वर्णन करने वाली हैं, उनके बांसुरी के वाद्य का, उनके आवाज का, ध्वनि का, और इसका प्रभाव किस तरह से वृंदावन के अलग अलग प्राणियों पर, पशुओं पर, गोपों पर, गोपियों पर पड़ रहा है, उसका वर्णन गोपियां करने वाली हैं। तो गोपियां आपस में बातचीत करके कृष्ण भगवान के वेणु का वर्णन करती हैं। लेकिन गोपियों के बातचीत शुरू करने के पहले शुकदेव गोस्वामी एक परिचय देते हैं, और पहले दो चार श्लोकों में ये परिचय हम पढ़ने वाले हैं। तो ये है पहला श्लोक वेणु गीत का। श्री शुक उवाच। इत्थं शरत् स्वच्छ जलम् पद्माकर सुगंधिना न्यविशद् वायुना वातम् सगो गोपालकोच्युतः। इत्थम्, इस तरह से शरत ऋतु आ गया। शुकदेव गोस्वामी ने पिछले अध्याय में काफी कुछ शरद ऋतु का वर्णन कर लिया है, तो अब कहते हैं कि शरद ऋतु आ चुका है। जैसे कि हम पहले वर्णन कर चुके हैं, ऋतु छह होते हैं, बराबर है। कौन से छह ऋतु होते हैं? वर्षा है, फिर शरद है, फिर हेमंत, हेमंत के बाद शिशिर, शिशिर के बाद वसंत, वसंत के बाद ग्रीष्म, और फिर से ग्रीष्म के बाद वर्षा। तो ये छह ऋतु क्रम से आती हैं और जाती हैं। साधारणतः दो दो महीने के हैं ये, लेकिन वृंदावन में ये छह ही ऋतु अवश्य हैं, लेकिन इन छह ऋतुओं के साथ में और भी एक अद्भुत चीज होने लगती है, और वो क्या है कि शिशिर ऋतु ये जोड़ी बना लेता है वसंत ऋतु के साथ, और ग्रीष्म ऋतु वर्षा के साथ जोड़ी बना लेता है, और उसके बाद में शरद ऋतु हेमंत ऋतु के साथ जोड़ी बना लेता है। तो ये तीन जोड़ी हो गए, दो दो दो, तो छह ऋतु और फिर ये तीन ऋतु कितने हुए? नौ ऋतु, और एक दसवां भी, दसवीं बात भी होती है वहां पर, वो क्या है? छह ऋतु एक साथ में, ये भी वृंदावन में होता है। कहीं देखा है आपने ऐसा? वो क्यों होता है? क्योंकि वृंदावन कोई भौतिक या साधारण या लौकिक स्थान नहीं है, वृंदावन साक्षात भगवान का धाम है। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं इस धरातल पर तो अपने धाम को लेकर आते हैं, जैसे है वैसे, हर एक कण उनके धाम का लेकर आते हैं, हर एक रज का कण कण लेकर आते हैं। इसलिए भौम वृंदावन अर्थात वो वृंदावन जो कि भूमि पर है, और गोलोक वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, वही का वही चिन्मय धाम, चिंतामणि धाम। और क्योंकि ये आध्यात्मिक जगत है पूरी तरह से, इसलिए यहां पर जो भी कुछ होता है वो केवल भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के आनंद और रस को बढ़ाने के लिए है। भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीला शक्तियां, उनकी योग माया शक्ति, ये सारी व्यवस्था करती हैं, ऋतुओं में फेरबदल करते हैं, ऋतुओं को और भी ज्यादा सुंदर बनाती हैं, वृंदावन के स्वाभाविक जो नैसर्गिक वातावरण को और सुंदर बनाते हैं, ये सब केवल इसलिए करते हैं कि श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए, उनकी लीलाओं के रस को बढ़ाने के लिए। और ये देखा जाता है कि वृंदावन में हालांकि 6 ऋतु आते हैं, लेकिन फिर भी वसंत ऋतु सब समय रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अमुक लीला के हिसाब से कभी कभी एक ऋतु ज्यादा प्रभावशाली होता है। हरेक ऋतु के अमुक गुण रहते हैं, विशेष विशेष गुण रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कई चीजें पाई जाती हैं, वर्षा ऋतु में कई चीजें देखी जाती हैं, शरद ऋतु में कई चीजें देखी जाती हैं। हम इनका वर्णन सुन चुके हैं शुकदेव गोस्वामी से। तो हरेक ऋतु के अलग अलग विशेष गुण होते हैं, और हालांकि 6 ही गुण वृंदावन में एक साथ विद्यमान रहते हैं, फिर भी कभी कभी भाव के हिसाब से, रस के हिसाब से, लीला के हिसाब से कभी एक ऋतु ज्यादा प्रभावशाली होने लगती है, और उस ऋतु के गुण उस समय वृंदावन में प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि ग्रीष्म ऋतु में अचानक जो है वसंत ऋतु के गुण प्रकट होने लग गए। तो इस तरह से योग माया देवी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को ऐसे वैसे वो परिवर्तित करती रहती हैं। और इन 6 ऋतुओं में वसंत ऋतु और शरद ऋतु ये सबसे अच्छे माने जाते हैं, और इन 2 ऋतुओं में भी कृष्ण भगवान रासलीला करते हैं। शारदीय रासलीला तो है और वसंत रासलीला भी है, तो दोनों समय में भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने शरद ऋतु में वृंदावन के सौंदर्य को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। है तो सब उन्हीं की शक्ति, लेकिन उनकी शक्ति का कमाल देख रहे थे, और इधर उधर ऐसे देख रहे थे, इतने प्रभावित हो गए, उनका मन हर लिया वृंदावन ने। वृंदावन भी भगवान का धाम है, ये उनकी शक्ति है। तो भगवान की शक्ति या भगवान का धाम इतना सुंदर है कि सर्व आकर्षक श्री कृष्ण को भी वो जीत लेती है। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, सबका मन हरण कर लेते हैं, मनोहर। लेकिन वृंदावन भी श्री कृष्ण के मन को हरण कर लेता है, तो हम समझ सकते हैं कि वृंदावन कितना सुंदर हुआ होगा, है बल्कि, क्योंकि वो कृष्ण के मन को भी हरण कर लेता है। और कृष्ण इस प्रकार से वृंदावन को देख रहे थे आकर्षित होकर, बिल्कुल विस्मित होकर, कि जिस तरह से एक छोटा बच्चा अपने प्रतिबिंब को आईने में देखता है, कभी कभी विस्मित हो जाता है, अरे ये कौन आ गया, ये कौन है। आपने देखा कभी बच्चे को आईने में देखते हुए, कभी कभी वो भ्रमित हो जाते हैं कि ये क्या क्या, मैं कहां से आई, क्या हो रहा है, कौन, क्या है सामने। तो कृष्ण भगवान अपने धाम को देखकर, अपने धाम के सौंदर्य को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मेरा धाम इतना सुंदर है। उनकी धाम की बात तो दूर है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि द्वारका में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने महल में जो खंभे हैं, जो कि नाना प्रकार के रत्नों से इत्यादि बना हुआ है, उनमें अपने मुखारविंद का प्रतिबिंब देखा तो इतने आश्चर्यचकित हो गए, सोचने लगे कि अरे ये व्यक्ति कौन है, इतना सुंदर कौन हो सकता है, ये मैं हूं, मेरा सौंदर्य इतना है। तो कृष्ण भगवान अपने ही सौंदर्य से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो जब कृष्ण भगवान खुद अपने सौंदर्य से आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो साधारण जीवों की बात तो फिर क्या है। इसलिए उनका नाम है कृष्ण सर्व आकर्षक। इस तरह से भगवान की शक्तियां भगवान के सौंदर्य को, भगवान की लीला को, उनके प्रेम के आदान प्रदान को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो यह है शरद ऋतु। तो शरद ऋतु में भी जितना भी कुछ सौंदर्य है, इसका वर्णन तो कर चुके हैं शुकदेव गोस्वामी संक्षेप में, लेकिन इनके 2 विशेष गुण हैं खास, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनसे कि शरद ऋतु का जो नैसर्गिक वातावरण है उसका सौंदर्य अधिक बढ़ जाता है। और वो 2 चीजें हैं जो यहां पर बताई हुई हैं। पहली बात है स्वच्छ जलम। जो भी कुछ पानी है वृंदावन का वो पूरी तरह से स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। बरसात के ऋतु में जैसे हमने बताया सब जगह कीचड़ हो जाता है, पानी में भी मिट्टी भर जाता है। जैसे कि तालाब होते हैं वो तो नीचे तो मिट्टी होता ही है, लेकिन जब बारिश आ जाती है तो सारे पानी हिलने लगता है और नीचे का जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाता है। या कभी कभी एक तालाब में कहीं बारिश का पानी तट की मिट्टी को अंदर ले आता है, तो इस तरह से पानी गंदा हो जाता है। लेकिन शरद ऋतु में क्योंकि ऐसे विचलित करने वाले कोई प्रभाव नहीं रहते, कोई वेग नहीं रहते हैं, इसलिए तालाबों में इत्यादि नदियों में पानी ये मिट्टी जो है नीचे रह जाता है और फिर पानी स्वच्छ हो जाता है। जैसे कि मानो एक भक्त का हृदय हो, और वृंदावन का स्वच्छ जल वृंदावन की शुद्धता से वृंदावन के शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। शुद्ध जल को देखकर हम समझ सकते हैं कि वृंदावन में सब कुछ कितना मधुर और कितना शुद्ध है। स्वच्छ जल वृंदावन के कहां कहां होते हैं, वृंदावन में जल कहां कहां पाया जाता है, आप बोल सकते हैं अलग अलग जगहों के जहां वृंदावन में जल पाया जाता है। यमुना जी तो भगवान की लीला में हमेशा शामिल रहती हैं, भगवान के विशेष भक्त हैं, तो यमुना जी में पाए जाते हैं। यमुना जी ने भगवान ने कितने सारे विहार किए, नौका विहार किया, वहां स्नान किया, बहुत कुछ लीलाएं किए वहां पर। और राधा कुंड श्याम कुंड ऐसे बताया जाता है कि राधा कुंड सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, क्योंकि ये स्वयं राधा रानी और कृष्ण भगवान के प्रेम के आंसुओं का सागर है। और ये स्थान वो है जहां श्रीमती राधा रानी स्वयं स्नान करती हैं, राधा कुंड और फिर श्याम कुंड जो कृष्ण का कुंड है। तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। और कौन सा है, कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर में स्नान करके एक महान भक्त ने गोपी का शरीर धारण किया था। कौन है वो, नारद मुनि। अरे वाह, सबको बहुत लीला मालूम है। नारद मुनि ने कुसुम सरोवर में स्नान किया और उनको गोपी का शरीर मिल गया। और कौन से सरोवर है, हा? सुरभि कुंड है, बहुत अच्छा। और गोविंद कुंड, गोविंद कुंड ने क्या किया, ये कहां से आ गया, कौन सी लीला से संबंधित है ये, जब गोवर्धन लीला के बाद इंद्र का मान भंग हो गया तो इंद्र क्षमा याचना करने के लिए कृष्ण के पास आए और फिर इंद्र ने देवताओं के साथ कृष्ण का अभिषेक किया। इंद्र के हाथी का नाम है ऐरावत। ऐरावत ने अपने सूंड से कृष्ण का अभिषेक कराया और फिर वो जो चरणामृत आया वो है गोविंद कुंड। ठीक है, और कौन से जगह हैं? मानसरोवर भी है। और मानसी गंगा जो कि गंगा है वास्तव में, जो भगवान से मन से उत्पन्न हुई थी ये मानसी गंगा, इसमें भी कई सुंदर लीलाएं हुई जो कि गोवर्धन के पास है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने जो कि नौका विहार कर रहे थे गोपियों के साथ में, उन्होंने धमकी दी गोपियों को कि मैं ये नौके को डुबा दूंगा, तो गोपियां बहुत घबरा गईं और उनके घबराहट देखकर कृष्ण भगवान बड़े खुश हो गए, बहुत आनंद आया उनको। तो ऐसे रस का आस्वादन भगवान श्री कृष्ण करते थे, ये मानसी गंगा। तो ऐसे बहुत सारे तालाब सरोवर कुंड नदियां झरने ये सब है वृंदावन में। और शरद ऋतु में ये सारे जलाशय ये बिल्कुल शुद्ध और शांत हो गए, पवित्र हो गए। वैसे तो आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र है ही, लेकिन भौतिक दृष्टि से भी वो पूरी तरह से पवित्र हो गए। और दूसरी विशेष बात क्या है जो वृंदावन के सौंदर्य को बढ़ाती है शरद ऋतु में, एक तो है स्वच्छ जलम और दूसरा है वायुना। वायुना वातम, वायुना मतलब वहां के बहुत शीतल पवन जो शरद ऋतु में बहता है। लेकिन ये शरद ऋतु के जो पवन है ये इसकी विशेष बात क्या है, सुगंधिना, इसमें सुगंध होता है शहर के गंध में और वृंदावन के गंध में बहुत अंतर होता है। नीचे कोई गाड़ी चालू कर देता है तो हमें वायु क्या ले आता है, वो जो पेट्रोल का और जो उसके प्रदूषण का जो ये है वो हमारे आता यहाँ आता है। वहां रेलगाड़ी चलती है तो कितनी बार यहाँ मंदिर तक वो धुआं आता है, तो हवा वो धुआं ले आती है। ये सारे शहर के गंध हैं, लेकिन वृंदावन का गंध क्या है, सुगंधिना। किस चीज का गंध आता है, पद्माकर सुगंधिना, इत्थम शरत स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना, पद्म आकर। क्योंकि नाना ये सब तालाबों में जलाशयों में सुंदर सुंदर पद्म हैं वृंदावन में, खास करके शरद ऋतु में। पद्म मतलब कमल पुष्प, कमल पुष्प भी कई तरह के होते हैं, लाल रंग का कलहार, नीले रंग का इंदीवर, ऐसे नाना रंग बिरंगी कमल पुष्प होते हैं, मल्टी कलर, रंग बिरंग, अलग अलग रंग के एक ही कमल होगा जो अलग अलग रंगों का होगा। तो ऐसे कितने सारे फल हैं, फूल हैं, कमल फूल जो कि ऐसे तालाबों में रहते हैं और वो बड़े सुगंधित होते हैं और शरद ऋतु में ज्यादा से ज्यादा खिलने लगते हैं। ऐसे भी कोई कमल है जो कि जमीन पे आते हैं, एक दो ऐसे होते हैं, ज्यादातर कमल केवल पानी में पाए जाते हैं। और कमल पुष्प शुद्धता का प्रतीक है, कमल पुष्प भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान के अलग अलग शरीर के दिव्य शरीर के अवयवों की तुलना कमल पुष्प से की जाती है। आप उदाहरण दे सकते हैं, कमल नयन, भगवान श्री कृष्ण के आंख, इनकी तुलना कमल से की जाती है। जब वनमाली कृष्ण शरद ऋतु में जाते हैं या वसंत ऋतु में भी जाते हैं तो क्या होता है, वहां की जो कमल पुष्पों की वायु आकर उनको स्पर्श करती है, बहुत धीर समीर, मतलब धीरे से चलने वाली वायु। बरसात के मौसम में वायु कैसी होती है, तेज चलती है, आवाज करती है, सीटी बजाती है, लेकिन शरद ऋतु में ऐसे नहीं, आराम से शांति से पवन चलता है। तो ये सारी लीलाएं रोज होती हैं। सगो गोपाल को अच्युत, फिर अच्युत भगवान श्री कृष्ण जिनका पतन कभी नहीं होता, गो मतलब गाय, गोपाल ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में वन में प्रवेश किए। अब वृंदावन की या कृष्ण भगवान की लीलाओं की विशेष बात यह है कि कृष्ण की तरह है ये लीलाएं भी नित्य नव नवायमान है, मतलब हमेशा फ्रेश लगते हैं, नए लगते हैं। आचार्य समझाते हैं कि हालांकि कृष्ण भगवान ग्वाल बालों के और गऊओं के साथ में रोज वन में जाया करते थे, लेकिन हर रोज ऐसे लगता था कि ये पहली बार हो रही है ये लीला। आज के पहले कभी कृष्ण भगवान ग्वाल बालों के संग वृंदावन में नहीं गए हैं, ये है वृंदावन। लेकिन इस भौतिक जगत में हर चीज घिसी पिटी बहुत जल्दी हो जाती है, हमें ऐसा नहीं लगता मंदिर में आते हैं कि हम मैं पहली बार आ रहे हैं, अरे फिर से मंदिर जाना नहीं लगता है, आपको नहीं लगता है क्योंकि आप तो भक्त है। लेकिन जो भक्त नहीं है वो तो सोचेंगे अरे कहाँ जाने, एक बार तो गए थे अभी क्या फिर से जाना। लेकिन जिनको भक्ति में रस आता है वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा मंदिर में आए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का दर्शन करें, भक्तों का संग करें, कीर्तन करें, सेवा करें भगवान की। क्योंकि कृष्ण भक्ति नित्य नवनवायमान है, फ्रेश है हमेशा। तो फिर ग्वाल बाल सब आगे चलते आए कृष्ण भगवान के साथ। ग्वाल बालों के माता पिता उनको बहुत प्रेम करते थे और उनका जो प्रेम है, स्नेह है, वो एक प्रकार के बांध के तरह था, बंधरा, डैम, जो कि उनको रोक रहा था, जो कि उनको बांध के अपने प्रेम के बंधारे में उनको बांध के रखा था ग्वाल बालों के माता पिता ने रात के समय। लेकिन ग्वाल बालों का हृदय तो बड़ा विचलित था, चंचल था, वो कहां जाना चाहता था, हृदय कृष्ण के साथ में। तो ग्वाल बाल सब प्रतीक्षा करते थे कि कब रात खत्म होगी, कब प्रातः काल हो जाएगा और हम कृष्ण भगवान के साथ में जंगल में गाय चराने के लिए जाएंगे। गाय चराना क्या, ये तो एक बहाना था, कृष्ण के साथ क्रीड़ा करनी थी उनको, क्योंकि सब ग्वाल बाल हैं, बच्चे हैं, बच्चों का स्वभाव होता है क्रीड़ा करना, तो क्रीड़ा करने के लिए जाना चाहते थे। तो जब सुबह का समय हो जाता था, कृष्ण बाहर आते थे, बांसुरी बजाते थे, चलो चलो ग्वाल बाल सब, समय हो गया जाने के लिए, चलो सुबह। जैसे कि बच्चे कभी कभी करते हैं, वो जब कुछ क्रिकेट खेलने का समय हो जाता है तो एक दूसरे के घर के बाहर जाकर बुलाते हैं, अरे आ जाओ, उसका जो भी नाम है उसका पुकारते हैं, एक नाम सुनकर चलो चलो क्रिकेट खेलना है, सब बच्चे कहां कहां से आने लगते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। यहां पर शहर के सड़कों में हम देखते हैं, तो वृंदावन में जब कृष्ण बाहर आते थे और बांसुरी बजाते थे तो बस ये सिग्नल की प्रतीक्षा करते थे सारे ग्वाल बाल, और फिर हजारों की संख्या में सारे ग्वाल बाल आ जाते थे, घर घर से सब हजारों की संख्या में आकर कृष्ण के साथ में, गायों के साथ में चल पड़ते, मानो कि एक नदी ने अपने बंध को, बंधारे को तोड़कर, उसके में बाढ़ आकर, नदी बाढ़ को तोड़कर आगे चल गई है। उसी तरह से ये ग्वाल बाल अपने माता पिता के स्नेह के बंधारे को, बांध को तोड़कर कृष्ण के साथ वन में चले गए। ये रोज की लीला, हर रोज नित्य नवनवायमान, और ग्वाल बालों को कभी नहीं लगा कि हम रोज हमें जाना है। किसी को, व्यापारी को भले लगता हो, या किसी व्यक्ति जो ऑफिस में काम करता है, अरे फिर से ऑफिस जाना, फिर से वही घिसी पिटे काम, फाइल भरो, ये करो, ये बेचो, ये खरीदो, लेकिन ग्वाल बालों को कभी ऐसे नहीं लगा। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि देखो, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं, इतने सालों से करते आए, कभी उब नहीं गए, लेकिन आप कोई भौतिक शब्द बोलते जाइए, भौतिक गाना बोलते जाइए, आप बहुत जल्दी उब जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक जीवन ऐसे नहीं है। तो और भी शरद ऋतु की विशेषता क्या है, शरद ऋतु में और कैसे सौंदर्य है, और कृष्ण भगवान वन में प्रवेश कर रहे हैं इस समय, हर ऋतु में आनंद लेते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो शरद ऋतु में जब भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करने जा रहे हैं वन में, उस समय क्या दृश्य है, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी दूसरे श्लोक में करते हैं। कुसुमित वनराजे सुष्मी भृंग द्विज कुल घोष्ट सरह सरे महेध्रम मधुपतेर अवगाह्य चारयंगाः सह पशुपाल बल सुकूज वेणुम। कुसुमित वनराजी, कुसुमित मतलब वनराजी मतलब वृक्ष, कुसुमित मतलब वो वृक्ष जिनमें फल आ गए हैं, नाना प्रकार के फल। वृंदावन में वन है तो वृक्ष तो होंगे ही, बहुत सारे वृक्ष हैं, नाना प्रकार के वृक्ष, जंबू के वृक्ष, आम के वृक्ष, नाना प्रकार के, और इन ये वृक्ष अभी खिल गए हैं फूलों से, फलों से। अभी आश्चर्य की बात है, क्योंकि आम तौर से वसंत के समय फूल खिलने लगते हैं, सही बात है ना, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ये शरद ऋतु के समय सब खिल रहे हैं। यह है अद्भुत जगह वृंदावन, सब कुछ यहाँ केवल कृष्ण के प्रसन्नता के लिए हो रहा है, कृष्ण को आनंद देने के लिए हो रहा है, और ये कृष्ण का धाम है, इसलिए किसी भी ऋतु में फल आए, फूल आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ सब कुछ संभव है वृंदावन में। और यहाँ पे असीमित विविधता है फलों की, फूलों की, और जैसे कि केतकी फूल है, और कदम्ब है, शीरीष है, किंशुक है, ये नाना प्रकार के पेड़ और उनके अलग अलग फल इत्यादि हैं। ये पेड़ ये कल्प वृक्ष है, चिंतामणि प्रकर सदमशु कल्प वृक्ष, चिंतामणि धाम में हर एक वृक्ष कल्प वृक्ष है, जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, और कभी कभी कृष्ण भगवान भी इन कल्प वृक्षों के नीचे जाकर कोई इच्छा करते थे कि कैसे मैं राधा रानी से मिलूं, किस तरह से मिला जाए, ये जो जटिला है, ये है वो है, बहुत बंधन कर रहे हैं बीच में, तो फिर कल्प वृक्ष वो इच्छा पूरी कर देती है। ये है वृंदावन के वृक्ष, कोई साधारण पेड़ नहीं है, और ये भी कृष्ण भगवान की लीला में भाग लेते हैं कई तरह से। एक तो कल्प वृक्ष के रूप में उनकी इच्छाओं पूर्ण करते हैं, दूसरी बात नाना प्रकार के फल फूल पुष्प इत्यादि उनको अर्पण करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, जैसे कि हम पहले भी सुन चुके हैं, कृष्ण को आश्रय देते हैं। तो ये सब वृंदावन सुष्मी भृंग, सुष्मी मतलब पागल उन्मत्त, भृंग मतलब भौरे, और वृंदावन में इस समय ये भौरे घूम रहे हैं पागल की अवस्था, पागल हो गए हैं। किस लिए पागल हो गए हैं, उन्मत्त हो गए हैं, अलग अलग इन फूलों के मधु का पान करके। जैसे कि व्यक्ति शराब का पान करके उन्मत्त हो जाता है, उसी प्रकार से ये भंवरे जो हैं, ये ज्यादा बहुत मधु लेते हैं और फिर उन्मत्त हो जाते हैं। कोई भी मीठी चीज ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, जैसे हम खीर खाते हैं, संदेश खाते हैं, मिठाइयां खाते हैं, ज्यादा शक्कर इत्यादि मीठी चीज खाने से एक प्रकार का नशा चढ़ जाता है। एक भक्त बता रहे थे कि जब वो एक बार वृंदावन में गए थे, एक जगह किन्हीं ने उनको किसी ने उनको खीर खिलाया, तो उन्होंने खाया, वह इतना जबरदस्त खीर था कि बाहर जब आए तो उनको लगा कि क्या हो रहा है, जैसे नशा जैसे चढ़ गया उनको, क्योंकि वो भी वृंदावन का खीर है। और इतनी मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं तो ये भी इससे नशा हो जाता है आदमी को, क्योंकि बहुत शक्तिशाली रहता है। तो ज्यादा स्वीट भक्त को नहीं खाना चाहिए, हालांकि प्रसाद है, हा? तो वैष्णव संस्कृति में तो कोई भोजन, कोई दावत, कोई फीस्ट स्वीट के बिना, मिठाई के मीठे चीज के बिना समाप्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़े सीमा में ही हमें लेना चाहिए, नहीं तो देखते हैं कि यहाँ भंवरों की क्या हालत है। भंवरे सुष्मी भृंग, वो तो बिल्कुल उन्मत्त हो गए हैं, क्योंकि जगह जगह हरेक फल से हरेक फूल से जाकर वो अमृत ले रहे हैं। ये अमृत कोई विशेष अमृत है जो उनको इन फूलों से मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो फूल हैं, कमल हैं इत्यादि, वो वृंदावन के फूल हैं, और जो कमल पुष्पों का जो अमृत है वो ऐसे जल में उग रहा है जहां कृष्ण ने स्नान किया है। तो इनको पोषण, इन फलों को, फूलों को पोषण कहां से मिला है? कृष्ण भगवान के दिव्य सानिध्य में इनको पोषण मिला है, इसलिए इनका जो अमृत है वो इतना मीठा है। और फिर ये मीठा अमृत जब भृंग भंवरे इसको पान करते हैं तो फिर वो तो पागली हो जाते हैं, और फिर एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल ऐसे घूमने लगते हैं, और विवेक बुद्धि खो बैठते हैं। जैसे एक शराबी व्यक्ति, उसको विवेक बुद्धि नहीं होती है ना, कहीं भी जाकर बैठता है, कहीं भी कुछ भी करता है। तो उसी प्रकार से ये भृंग, ये एक फूल से दूसरे फूल जाते हैं, और जब उन्मत्त हो जाते हैं कहीं भी जाकर बैठ जाते हैं, किसी भी फूल के ऊपर, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि इसमें मधु है या नहीं है, एक बार वो उन्मत्त हो गए हैं तो। और फिर वो अपना गीत गाने लगते हैं, भंवरे भी गुनगुनाते हैं अपनी आवाज में, वो भी कृष्ण लीला का वर्णन करते रहते हैं। और इस तरह से जो ये भंवरे हैं, ये भी कृष्ण की लीला में भाग लेते हैं। द्विजकुल घुष्ट, द्विजकुल, द्विज मतलब पक्षी, वैसे द्विज का मतलब क्या है, ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को भी द्विज कहते हैं और पक्षियों को भी द्विज कहते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि पक्षी का जन्म अंडे से होता है, द्विज दूसरा जन्म, जैसे ब्राह्मण को जब दीक्षा मिल जाती है तो दूसरा जन्म मिल जाता है, इसलिए उसको द्विज कहते हैं। इसलिए जन्मना जायते शूद्र संस्कारार्थ ही भवे द्विज, तो जन्म से आदमी शूद्र होता है लेकिन दीक्षा संस्कार जब हो जाता है तो द्विज हो जाता है, उसका दूसरा जन्म हो जाता है। तो उसी प्रकार से पक्षी का जन्म दो बार होता है, पहले तो जो माँ है वो अंडा देती है, वो पहला जन्म है, फिर अंडे से बाहर निकलता है वो दूसरा जन्म है, इसलिए पक्षी को भी द्विज कहा गया है। तो ये पक्षियां जो वृंदावन में हैं, ये भी बहुत महान भक्त हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, इसलिए जो भी वो कहते हैं वो कृष्ण को ही पुकारते हैं। जैसे जो मोर हैं वो काके 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 कहते हैं, तो आचार्य बताते हैं कि का मतलब कृष्ण, के मतलब राधा, तो ऐसे वो बुला रहे हैं राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, मोर बुला रहे हैं। और जो कोयल है पपीहा, ये भी अलग अलग तरह के कोयल हैं, वो भी कुहू 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 करते हैं, कु मतलब का मतलब कृष्ण, वो भी कृष्ण को बुला रहे हैं अपनी भाषा में। तो सारे पक्षी जो हैं वो भी कृष्ण को ही बुला रहे हैं, और ये सब ऐसे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं जो वेदों को भी नहीं मालूम है, क्योंकि ये वृंदावन के निवासी हैं सब, कोई साधारण ये नहीं है वो। इस तरह से ये सारे पक्षियां घूम रहे हैं, सारे वृंदावन में घूम रहे हैं, किधर किधर घूम रहे हैं यह वर्णन करते हैं। सरह सरीन महिध्रम, सरह मतलब जो तालाब है, सरित मतलब नदियां हैं, महिध्रम मतलब पहाड़। तो ये पक्षियां घुष्ट मतलब उनकी आवाज सब जगह फैली हुई है और वो घूम रहे हैं सारे जगह, सारे ब्रज में घूमकर अपनी सुंदर बोली से कृष्ण राधा कृष्ण को बुला रहे हैं। ये सुंदर दृश्य का वर्णन शुकदेव गोस्वामी करते हैं। मधुपतिर अवगाह्यचारयन गाह, फिर मधुपति श्री कृष्ण यह वन में अंदर जाते हैं, तो कृष्ण का नाम यह मधुपति कहा गया है। कृष्ण भगवान के हर एक नाम कोई मतलब होता है ना, वैसे किसी भी नाम का मतलब होना चाहिए, है कि नहीं, हर एक नाम का मतलब होता है। तो कृष्ण भगवान का जो नाम है ये है यहाँ पर मधुपति। तो आप बता सकते हैं कि इनका नाम मधुपति क्यों आया? बहुत सारे कारण हैं, आप बता सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा। एक कारण ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने मधु दैत्य का वध किया। मधु दैत्य कौन था? वो एक असुर था। सृष्टि के निर्माण के समय इस असुर ने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया और फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक अवतार लिया। अवतार कौन सा था? हयग्रीव। हयग्रीव अवतार लेकर उन्होंने मधु का वध किया और वेदों को वापस लाकर ब्रह्मा जी के हवाले कर दिया। उस समय से भगवान श्री कृष्ण का नाम हुआ मधुसूदन या मधुपति या माधव। माधव शब्द के भी कई अर्थ होते हैं, तो मधुपति का ये एक अर्थ है कि उन्होंने मधु नाम के असुर का वध किया। और क्या मतलब है? माधुर्य रस का स्वाद लेते हैं, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस मतलब भगवान और गोपियों के बीच में जो संबंध है उसको माधुर्य रस कहते हैं। तो मधुपति वो हैं जो मधुर रस के स्वामी हैं, मधुर रस का आस्वादन करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम है मधुपति। और क्या कारण है इनका मधुपति नाम होने के लिए? वसंत ऋतु का और एक नाम है माधव। तो भगवान श्री कृष्ण भी माधव ऋतु में वो जाके लीला करते हैं, रमण करते हैं, वो माधवपति के भी स्वामी हैं। ये और एक कारण है जिसकी वजह से भगवान कृष्ण को मधुपति कहते हैं। और क्या कारण हो सकते हैं? मधु कृष्ण भगवान के वंश में, यदु वंश में एक पूर्वज थे, इसलिए जब उनका नाम माधव कहा जाता है, माधव या मधुपति मतलब मधु राजा के वंश के स्वामी, यदु वंश के स्वामी, इसलिए उनका नाम है मधुपति। और मधुपति ये भी है जो भौरों के राजा हैं। भौरों के राजा क्यों हैं? जाति एक ही है दोनों की, ऐसे आचार्य समझाते हैं। कृष्ण और भौरों की जाति एक ही है। जाति एक होना मतलब आदतें वही हैं। हम कहते ना वो किसी को ऐसे बोलना तो उसकी जाति ऐसी है, ऐसा कहते हैं ना, उसकी तो जात ऐसी है, मतलब वो ऐसे ही आदमी है। तो आचार्य बताते हैं कि कृष्ण भगवान की जाति वो भौरों की जाति जैसी है। क्यों? आदतें मिलती जुलती हैं। कौन सी आदतें? रहन सहन का ढंग सब ऐसा एक ही है। एक तो रंग एक समान है। कृष्ण का रंग क्या है? सांवला है। भौरों का रंग भी वैसे ही होता है। साथ साथ आपने भौरे को देखा है, स्वर्ण रंग की पट्टी उनके शरीर पर होती है, और कृष्ण भगवान का पीताम्बर स्वर्ण रंग का रहता है। भौरों के ऊपर रेणु रहता है, पॉलन के कणकण रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सोने के गहने रहते हैं। ये भौरे गुनगुन 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 अपनी आवाज करते हैं, गुनगुनाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं। और ये भौरों की आदत क्या है? किसके पीछे जाते हैं? मधु, मधु का पान करने जाते हैं। कृष्ण भगवान भी मिठास चाहते हैं, अमृत चाहते हैं, सब जगह अपने भक्तों के पास जाते हैं मिठास लेने के लिए। और एक समानता है कि भौरे एक पुष्प से वहां अमृत लेते हैं, दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण एक गोपी के से फिर दूसरे, दूसरे गोपी से तीसरे। इसलिए गोपियां बड़े नाराज हैं कृष्ण के ऊपर कि हम सबको छोड़कर वो कुब्जा के पास गई, गए मथुरा में, तो केवल भौरे के बराबर है ये। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जो है वो मधु, माधुर्य, स्वीटनेस, इसके वो स्वामी हैं। इस तरह से सुंदर वर्णन करते हैं। और ये सारे जो भवरे हैं वो वैजयंती माला के पास आते हैं भगवान के। भगवान फूलों की माला पहनते हैं ना, इसलिए उनका नाम क्या है? नहीं, वो फूलों का माला पहनते हैं। फूल कहां से आते हैं? वन से, वनमाली, इसलिए उनका नाम है वनमाली। तो वनमाली श्री कृष्ण वैजयंती माला पहनते हैं, और इस माला का वर्णन आगे चल के इस अध्याय में होने वाला है। तो भौरे जो हैं वो वैजयंती माला का बहाना बनाकर आते हैं कृष्ण के पास, लेकिन वास्तव में उनको मधु चाहिए स्वयं श्री कृष्ण का, क्योंकि वो जानते हैं कि असली मधु, असली जो शहद है वो तो भगवान श्री कृष्ण है। मिठास के, माधुर्य के उद्गम तो वही है। जो फूलों में मधु आ रहा है वो तो कृष्ण से ही आ रहा है सब कुछ, तो कृष्ण को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। इसलिए मधुपति का और एक अर्थ है कि वो भौरों के राजा हैं। ये भौरे जो उनका ही समाज है, सब मिठास के पीछे, माधुर्य के पीछे वो लगे रहते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण को मधुपति कहा गया है। अवगाह्य चार्यान गाह, इस तरह से उन्होंने प्रवेश किया। चार्यान मतलब गायों को चराते चराते, गाह चार्यान, सह पशुपाल बालह, बलह बलराम के साथ और सारे ग्वाल बालों के साथ। और साथ साथ उन्होंने क्या किया? अब पॉइंट पे आ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि शरद ऋतु का सच्चा ऐश्वर्य क्या है। चुकूज वेणुम, अपनी वेणु को बजाते बजाते, भगवान श्री कृष्ण की वाणी, उनकी वेणु, वाणी भी लेकिन वेणु बहुत अद्भुत है, और इसलिए जानबूझकर सुखदेव गोस्वामी ने शरद ऋतु के वर्णन के अंत तक ये वेणु की बात रखी है। और फिर सुखदेव गोस्वामी खुद वर्णन नहीं करेंगे उनकी वेणु का ज्यादा,
वो गोपियों के ऊपर छोड़ देंगे। तो सुखदेव गोस्वामी एक ऐसे नाटक लिखने वाले हैं, मतलब एक प्लेराइट हैं, जिसमें अभी जो सुनाने वाले हैं गोपियों के मुख से किस सुंदर ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने ये वेणु बजाई थी और वेणु ने किस प्रकार से सबको प्रभावित किया, उसका वर्णन हम कल से देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपके कोई प्रश्न है, कोई टीका है कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम जी वो भी रासलीला करते हैं, तो वो कौन से ऋतु में करते हैं? थोड़े समय पहले बलराम रास यात्रा, वो भी उत्सव माना जाता है। भगवान भी एक बार आए थे, बलराम जी भी आए थे, और शरद में ही उन्होंने भी उनकी रासलीला की। दशम स्कंद में भी वर्णन आता है, द्वारका से भी एक बार वापस लौट कर आए बलराम जी रासलीला करने के लिए, 2 महीने वहां पर रहे। और कोई प्रश्न?
भगवान अपने अवतार लेते हैं धरती पर, तो पूरा उनके एक एक कण, हर एक कण ये करते हैं, हर एक कण उनके साथ में आता है, तो नित्य बद्ध जीव भी उनके साथ आते हैं।
नित्य बद्ध जीव?
हाँ, बद्ध जीव या नित्य शुद्ध जीव उतना ही आता है।
नित्य बद्ध जीव तो हमेशा ये संसार में ही रहते हैं, वो तो भगवान के धाम में तो जा ही नहीं सकते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम को लेकर आते हैं तो उनके थोड़े नित्य सिद्ध जो उनके प्रेमी प्रियकर पार्षद हैं उनको लेकर आते हैं साथ में। माइक सब लोग सुन सकते हैं।
नित्य जो नित्य सिद्ध हो जाते हैं यहाँ से नित्य बद्ध से,
हाँ,
तो वो भी वो लीला में भाग लेते हैं।
जो यहाँ से पहले सिद्ध होकर वापस भगवान के धाम में चले जाते हैं, जब भगवान यहाँ अवतार लेते हैं तो क्या ये जीव भगवान के साथ में आते हैं? ये प्रश्न है, वो भगवान के ऊपर है जिनको वापस ले आना चाहते हैं। अगर उनको ले आएंगे भी वो केवल दूसरों को सिद्ध करने के लिए, केवल उनके असिस्टेंट के रूप में उनको ले आएंगे, सेवक के रूप में। लेकिन किस जीव को भगवान साथ में लाएंगे और नहीं लाएंगे वो भगवान चूज करेंगे। ये है कि द्विज मतलब कोई ब्राह्मण को, महान व्यक्ति को बताया जाता है। तो द्विज पक्षी को क्यों कहा जाता है? कि पक्षी तो अपने आप में महान नहीं है, तो आप कोई बता सकते हैं? इसके बारे में चर्चा की थी, पक्षी को द्विज क्यों कहा गया है? जो दो बार जन्म लेता है, द्वि और ज, तो ब्राह्मण को द्विज इसलिए बताया जाता है कि संस्कार के बाद जब दीक्षा होती है उसका दूसरा जन्म होता है, तो इसलिए उसको द्विज, ज मतलब जन्म, द्वि मतलब दूसरा, तो द्विज मतलब जिसने दूसरा जन्म लिया है। साधारण तो ये ब्राह्मण होता है, लेकिन पक्षी भी दो बार जन्म लेता है, पहली बार अंडे के भीतर और फिर दूसरी बार जब अंडा टूट जाता है उस समय।
कृष्णा,
अरे कृष्ण,
प्रभु जी वर्षा ऋतु का जो वर्णन है वो महत्व भक्त के जीवन में कैसा है, महत्वपूर्ण है कि नहीं?
वर्षा ऋतु, ये कहाँ के वर्षा ऋतु का वर्णन है? वृंदावन का, इसलिए महत्वपूर्ण है। नहीं तो केवल वर्षा ऋतु का वर्णन करने जाएं तो उसमें कोई ज्यादा आध्यात्मिक लाभ नहीं है। लेकिन ये वर्णन कौन कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। किस जगह का वर्णन कर रहे हैं? वृंदावन का। और इस ये वर्णन को किससे जोड़ रहे हैं? कृष्ण लीला से। और वर्णन करते करते और कितने सारे आध्यात्मिक शिक्षा हमें दे रहे हैं, इसलिए ये वर्णन हम पढ़ते हैं। नहीं तो श्रीमद् भागवत में ऐसे वर्णन का क्या मतलब है? कोई साधारण कोई भौतिक चीज का वर्णन तो श्रीमद् भागवत में नहीं आएगा, ठीक है ना? कल जब हम वर्षा का वर्णन सुन रहे थे तो कितने सारे आध्यात्मिक तत्व उसमें से निकल आए, बराबर है?
हरे कृष्ण। प्रभु जी भगवान की नित्य लीला चलते हैं और भगवान अपने साथ पार्षदों को भी लाते हैं, तो भगवान की लीला में भगवान वीर रस लेने के लिए कई सारे असुरों का रोल अपने नित्य पार्षदों को ही देते हैं, तो जब हम लीला सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसे अलग अलग असुरों के प्रति घृणा आती है, तो क्या इसके कारण हमारे हृदय से या ऐसे कुछ अपराध होता है, क्योंकि वो तो भगवान के बहुत नित्य पार्षद है, नजदीक के है।
वैसे देखा जाए ये असुर भी बहुत विशेष व्यक्ति हैं, चाहे वो भगवान के धाम से आने वाले नित्य पार्षद हों, नित्य सिद्ध हों, या तो फिर इस ब्रह्मांड के कोई जीव जिसके ऊपर भगवान कोई कृपा करना चाहते हैं, जिनको कोई ऋषि मुनियों के शाप के निमित्त से असुर का शरीर मिलता है, फिर वो भगवान की लीला में आते हैं। लेकिन जो भी हो, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीला अमर है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त अमर हैं, अमर इस दृष्टि से कि आज तक हम उनकी चर्चा करते रहते हैं। प्रहलाद का नाम आज भी कितने करोड़ों साल बाद हम ले रहे हैं ना, लेकिन साथ साथ प्रहलाद के साथ किसका नाम लेते हैं, हिरण्यकश्यप का नाम भी लेते हैं ना। तो हिरण्य प्रहलाद के साथ साथ हिरण्यकश्यप भी अमर हो गया इस दृष्टि से कि हिरण्यकश्यप का नाम भी गूंजता रहेगा कि हिरण्यकश्यप का वध किया भगवान ने, और खास हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान ने यह रूप धारण किया। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो इनकी भूमिका भगवान श्री कृष्ण की लीला में बहुत महत्वपूर्ण है, और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ये जय और विजय है। तो जय विजय के रूप में अवश्य हम उनको सम्मान देते हैं, हम उनकी उपासना कभी कर सकते हैं, लेकिन हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस रूप को उन्होंने धारण किया है, जिन अनर्थों के वो प्रतीक हैं, वो भक्ति के विरुद्ध हैं। इसलिए अंदर से हम जान सकते हैं कि ये वास्तव में मूल रूप में भगवान के भक्त हैं उनके धाम में, लेकिन अभी उन्होंने एक रूप धारण किया है जो कि विष के समान है। तो ज्यादा से हम उस विष को या उस पाप को पाप से घृणा करते हैं, व्यक्ति से नहीं। जिस पाप का प्रतीक हिरण्यकश्यप है उससे हम घृणा करते हैं, क्योंकि अंत में हर एक व्यक्ति को, जितना भी बड़ा असुर क्यों ना हो, जितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर भगवान चाहे तो उसको शुद्ध कर देते हैं, और खास करके जो असुर हैं उनका वध करके तो उनको मुक्ति मिल जाती है। थोड़े असुर उनको सायुज्य मुक्ति मिल जाती है, निराकार में लीन हो जाते हैं, और थोड़े असुर हैं जिनको उनके धाम की प्राप्ति होती है,